पंजी परमेश्वर, जुम्मन शोग और अलगू चौधरी मेम गाड़ी मित्रा दी, साये सचे मेम गेती होती दी, कुछ लेने देन मेम भी सच्चा दा, एक को दूसरे पर अडल विश्वास दा, जुम्मन जब हज करने गए दे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए दे, अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर जोड़ देते दे, उनमें ना गान पान का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते दे, मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक भी थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु जी की बहुत सेवा की दी, जुब रकाबिया मौंजी जुब गुप प्याले चाहे उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चलन अलगू को आठ गेट तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे, उन्हें शिक्षा की उपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होते हैं गुरु के आशीर्वाद से, बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शोक के आशीर्वाद अथवा संशय का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में ने व्यासंकित कोई बात उड़ा नहीं रहेगी, विद्या उसके भाग्य ही मेम ना दी तो कैसे आती। मगर जुमराती शोक स्वयं आशीर्वाद के कायल ना दे, उन्हें अपने सोट पर अधिक भरोसा दा और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होते दी, उनके लिगे हुए रहना नामे या बिनामे बिनामे पर कचहरी का मुहरिर भी कलम न उड़ा सकता था। हल्के का डाकिया कस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शोक अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आधार प्राप्त बने दे। जुम्मन शो की एक बूटी गाला दी, उसके पास कुछ छोटी सी मिल्कियत दी, परंतु उसने उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौट वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली दी। जब तक दानपत की राष्ट्र रजिस्ट्री ना हुई दी, तब तक गलाजन का गुप आदर सत्कार किया गया, उन्हें गुप स्वादिष्ट पदार्थ गिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षसी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन गतिदारियां पर भी मां ने मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कटवी बातें के कुछ तेज तिगे सालन भी लेने लगी। जुम्मन शोक भी निडुर हो गए। अब विचारी गलाजान का प्रायम नित्य है, ऐसे बातें सुननी पड़ती थी। बुटिया ना जाने कब तक जिएगी, तो दिन बीते उसर क्या दे दिया, माने मोल लो ले लिया है, बदारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतर दी। जितना रुपया इसके पेट में चौंक चुके उतने तो से तो अब तक गांव बोल ले लेते। कुछ दिन गलाजान से सुना और सहा, पर अब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गोस्वामी के प्रबंध में दखन देना उचित ना समझा। कुछ दिन तक और यौम ही यो देख दोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन गाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो। मैं अपना पगा का लूंगी, जुम्मन से दुष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यह हम फलते हैं। गाला ने नर्मदा से कहा, मुझे कुछ रुगा सुगा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन से नंबर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह तोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लटकर आई हो। गला बिकट गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हौसे जिस तरह कोई शिकारी हिरण के को जाल की तरफ आते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हम हरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की गटगट पसंद नहीं, पंचायत में किसकी जीत होगी। इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था। आस पास के गांवों में ऐसे कौन था जो उसके अनुग्रहों का श्रणी ना हो। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके। किस में इतना बल था जो उसका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते से फजायत करने आवेगे ही नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूटी गाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर सुख कर कमान है गई दी, एक एक पंग चलना दुबर दा। मगर बात था पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बूटिया ने दुख के आंसू ना बहाए हो। किसी ने तो यौम की ऊपरी मन से हूँ हाम करके डाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी, कहा कर्ब में गाँव लटके हुए है, आज मरे कल दूसरा दिन पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए, रोटी गाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब गेती बारी से क्या काम है, कुछ ऐसे सज्जन भी दे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। चुकी हुई कमर, पोपला मुह सन के से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हासी क्यों न आवे। ऐसे न्यायप्रिय दयालु दिन वत्सल पुरुष बहुत काम दे। जिन्होंने उस अबला के दुकड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो, चारों ओर से धूमधाम कर बिचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पड़क दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू मुझे बुला कर क्या करोगी, कई गांव के आदमी तो आवेगे ही। गाला अपनी विपद तो सबके आगे रो आई, अब आने ना आने का अकित्यार उनकी उनको है। अलगू योम आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना गोलूंगा। गाला क्यों बेटा? अलगू अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिकट नहीं कर सकता। गला बेटा क्या बिकट के डर से ईमान की बात ना कहेगे? हमारे साए हुए धर्म ज्ञान की सारी शक्ति लूट जाए तो उसे गबर नहीं होते, परंतु अलाका सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिकट के डर से इमरान की बात ना कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शौक जुम्मन ने पहले से ही फर्शा बिदा रगा दा, उन्हें पान इलायची हुक्के तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब तबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियाम की कलरवयुक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहां भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन पर गई, पर अधिकांश दर्शक ही दे निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे दे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी दी। एक कौन में आग सुलग रही दी, नई ताबड़तोड चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उबलों से अधिक धुओं निकलता था या चिलम के दामों से लटके इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोती दे, चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जब्बाव के बोझ समझकर जूट के जूट जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूटी गाला ने उनसे विनती की, पंजो आज तीन साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने बांजे जुम्मन के नाम लिख दी, इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ता हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा, बेकस बेवों हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा, और किसको अपना दुख सुनाएं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलो। अगर मुझ में कोई ऐब देखा तो मेरा मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आ लेता है। मेम पंजम का अकम सी माते पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र जिनके कई आसमियों आसमियों को जुम्मन ने अपने गांव से बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियां किसे पंच बत्ते हो गए हो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विश्वासकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे ऐसी ना किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोलो, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, गलाजान जैसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। गाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंजों का नाम क्यों नहीं बताता देता, कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने कुछ से कहा, अब इस वक्त मेरा मुख न गुलवाहो, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहे पंच बतो। गाला जन जुम्मन के आक्षेप को समझ गई, वह बोले, बेटा गूत से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, कैसी बात करते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना है हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मारते हो, लो मैं उन्हें सरपंच बनती हूँ। जुम्मन शोक आनंद से फूल उड़े, परंतु भावों की छिपा कर बोला, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते, देवे कन्नी काटने लगे, बोले, गाला तुम जानती हो किसी मेरी जुम्मन सो गाठी दोस्ती है। गाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना इरमान नहीं बेचता, पंच के दिल में गुर्दा बसता है, पंजों के मुंह से जो बात निकलती है वह गुता की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए, रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों के बुटिया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शोक जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है कि, और हम भी जो कुछ बना पड़ा तुम्हारी सेवा करने रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूटी गाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो, तुमको पंजों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अलगू यह सब देखावे की बातें कर रहा है, अतएव शांतचित होकर बोले, पंजों 3 साल हुए गलाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम जिब्बा कर दी, मैम ने उन्हें तो हयात गाना कपड़ा देना कबूल किया था, गुदा आज तक मैंने गलाजान को कोई तकलीफ नहीं दी, मैम उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, उनकी गितमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा बन अनबन रहती है, इसमें क्या बस है, गलाजान मुझसे माहवार कर्ज उल्गा मांगती है, जायदाद जितनी है वह पंजों से छपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिमनाओं में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी यह इस चमेले में ना गढ़ता। बस मुझे यही कहना है, आयता पांचे को अगित्यार है जो फैसला चाहे करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथाड़े की चोट की पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मगध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया, अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसे कई पलट हो गई कि मेरी जड़ गोदने पर तुलना हुआ है। इन मालूम कब ही कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। जुम्मन शोक इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए दे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शोक पंजों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह निधि स्वागत मालूम हो है कि गला जान हो माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि गाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होते है कि माहवार खर्च दिया हो जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मुजर ना हो तो हिबालनामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सनोटे में आ गए। जो अपना मित्र आओ वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर जूरी फेरे, इससे समय की हेर फेर के सेवा और क्या कहे। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर गोवा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपड़ी गोचबाज ना हाते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होते। यह हुआ प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पांच अलगू चौधरी की इस निधि परायणता की प्रशंसा बोलकर कर सहे देवा कहते इसका नाम पंचायत है। दुख का दुख और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही स्वयंवादियों के बल पर प्रति डहरी है, नहीं तो वह कब ही रसातल हो चलती जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की कट हिला दी। अब वे साथ साथ बातों करते नहीं दिखाती देती। इतनी पुरानी मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक चौंका भी न सह सकी। सचमुच यह बालू की ही जमीन गढ़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवक ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते दे मगर उसी तरह जैसे तलवार से डाल मिलती है। जुम्मन के चित में मित्र की कुटिलता आड़ों पहर घटका करती थी। उसे हर घड़ी यह चिंता रहती थी कि किसी तरह बतला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की श्रुति में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर में बौला की एक बहुत अच्छी गई मिल लाए दे। बैल पुचाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सांगी वाले दे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोटी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दकबाजी ही सजा है। इसना इंसान सब बली भले की कर जाए, पर गुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिल दिया है। चौधरी ने भी जुम्मन पर ही दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर दिया है। चौधरीन और करीमन में इस विषय पर एक दिन गुप ही वाद विवाद हुआ। दो देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग्य वक्रोक्ति अनियोगित और उपमा और अलंकारों में बात हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्हें अपनी पत्नी को डांट हपट कर समझा दिया। वह उसे रणभूमि से घड़ा भी ले गए। अदर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोट बहुत गंदा गया पर ना मिला। निदान दा सलाह हटरी टहरी की इसे बेच डालने चाहिए। गांव में एक समझ साहू देवा इक्का गाड़ी हांक दे। गांव से घूट ली लाद कर मंडी ले जाते। बड़ी से तेल नमक भर लाते और गांव ने बिचने इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बैठ रखे थी जेब होम। आजकल तो एक ही जेब में लाते पड़े रहते हैं। बैल देखा गाड़ी में दौड़ाया, बाल बौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। एक मही में दाम दुकाने का बदा डहरा चौधरी को भी गरज दी ही, चोटे का परवाह ना की। समझ साहू ना नया बैल पाया तो लगे उसे रगड़ने। वह दिन में तीन तीन चार चार चप्पे करने लोग ने ना चारा की फिक्र दी ना पानी की, बस चप्पे से काम दा। मंडी ले गए वह कुछ सुगा गुस्सा सामने डाला दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना लेने पाया था कि फिर जो दिया। अलगू चौधरी की घर तो चैन की बंशी बजती थी। बिलराम चढ़े चमाहे कभी बहली में जाते जाते दे। गुप उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ती चले जाते थे। वहां बलराम का रदी दा साफ पानी दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ गली और यही नहीं, कभी कभी जी का स्वाद भी चखने की को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी गरहरे करता पहुंचता और सहलादा द कहाम वह सुख चैन कहाम यह ओडम पहर की चपत महीने भर ही में वह पैसा गया। इस इक्के को जुबा देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दुमर दा इट्टियाम निकल आई दी पर दा वह पानी दर मार की बर्दाश्त ना दी। एक दिन चौधरी चेप में साहू जी ने दुना मोज लौदा। दिन भर का दका जानवर पैर न उड़ते दे भर साहू जी कोट फट करने लगे। बस फिर क्या दा बैला कलेजा दौट कर चला कुछ दूर दौड़ना और छा की जरा दम ले लूं। पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र दी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिर के फिर ना उड़ा। साहू जी ने बहुत पीड़ा डंक पकड़ कर गिंजा। नदनों में लकड़ी घुस डूस दी पर कहीं मुतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शौक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा गोल कर अलग किया। सोचने लगी कि गाड़ी कैसे घर पहुंचने। बहुत चीखें चिल्लाए पर देहात का रास्ता बच्चों की आंग की तरह सच होते हैं ही बंद हो जाता है। कोई नजर ना आया। आसपास कोई गांव भी ना था और क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और धरने लगाए। और किसने रगे अबागे तुझे मरना ही दा ते घर पहुंच कर मरता। ससुरा बीच रास्ते ही में मर रहा। अब गाड़ी कौन गीचे। इस तरह साहू जी चुप गुप जले बुने। कई बोर गुट और कई पीपे दी उन्होंने बीचे दे दो। गाय 250 रुपये कमर में बंदे दे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के दे। अतएव चोट कर जा भी ना सकते दे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही ले गए। वहीम जगा करने की डाल ली। चिलप पी गया फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद भुलाते रहे। अपनी जान में तो वह जलते ही रहे पर पौ फड़ने भी दो नींद टूटी। और कमर पर हाथ रगा दो तैली गायब। दबरा कर इधर उधर देखा तो कई कंस्तर ताइल भी नदारत। अफसोस में बिचारे ने सिर पीट लिया और पच्चाट गाने लगा। प्रात काल रोते बिलकते और पहुंचे सहु आईन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई फिर अलगू चौधरी के गोलियां देन लगी। निकड़े ने ऐसा कुलचनी भाईल दिया कि जनबर की कमाई लूट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही हिलजलाए हुए कुत्ते की तरह जट बैठते और अनबन बकने लगते। वाह, यहां तो सारे जन्म की कमाई लूट गई। सत्यनाश हो गया, उन्हें दामों की पड़ी है। मर्दा बैल दिया दा उस पर दाम मांगने चले हैं। आंगों में जूल चोंग दी। सत्यनेशी बैल गले बांध दिया, हमें नीरा पांगा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए की बच्चे हैं, ऐसे बर्दू कहीं और होगे। पहले जाकर किसी गाटे में मुंह दो आओ, तब दाम लोग ना जी मानता हो तो हमारा पैर कोल ने जाओ। महीना पर की बदले तो महीना जीतो, और क्या लोगे। चौधरी की असमजित कौम की कमी ना दी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत हो जाते और साहू जी के बराने की पुष्टि करने। परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ ओ लेना आसान ना था। एक बार वह भी गरम पड़े। साहू जी बिकट कर लाठी ढूंढने घर चलते गए। अब साहू आई ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। साहू आई ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गया। उन्होंने दोनों को समझाए, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। अब परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम ना चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ लई हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी रही हो गए। अलगू ने भी हामी पर भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही सद्या का समय था। खेतों में कोई पंचायत कर रहे दे। विवादग्रस्त विषय था इसकी। मर्डर की फलियों पर उनका कोई स्वस्थ है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल ना हो जाए तब तक वे लगने वाले की फूकर पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर आवश्यक समझते दे। पेट की डालियों पर बैठी शोक मंडली में यह प्रश्न दिखड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमराउत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दख करने में भी संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र में कहा, अब तेरी क्या है, पंजों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बढ़ते हो। अलगू ने दिन भाव से कहा, समुचु साहू ही दून ले। समझ गड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी और ने जुमन शोक। जुमन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा दग दग करने लगा, माने किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात को दाट गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई अच तो नहीं? चौधरी ने निराशा होकर कहा, नहीं, मुझे क्या अर्ज होगा? अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुआ हमारे संगोचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल कर गटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शादी कुड़ी है बेटा, हुआ कितनी दृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंडित मित्र मंडल पर आक्रमण करता दे। परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मित्र मंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में मक डरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज, कितना विचारशील, कितनी न्याय परायण होती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उत्तट रहता है, माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं, वे उसे कुल कलक समझते हैं। परंतु छोटी ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित अमत उमत युवक कितना दयाशील, कैसा शांतचित हो जाता है, यह भी उत्तरदायित्व की ज्ञान का फल है। जुम्मन शोक के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सुजित आसन पर बैठा हो, मेरे मुख से उस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जव और भी डलना उचित नहीं। पंजम ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते दे। इस विषय में तो सब सहमत दे कि समझ को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते दे कि बैल का के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू की दंड में भी देन चाहते दे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसे निर्दयता करने का साहस ना हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अगलू चौधरी और समझ साहू पंजों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझ को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारियां ना दी, अगर उसी समय दाम दे दिया जाते तो आज समझ उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध ना किया गया। रामदान मिश्र बोले, समचू ने बैल को जान बुझ कर मारा है, अतएव उससे दंड लेने चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है। हमको इससे कोई मतलब नहीं। चकडू साहू ने कहा, समझ के साथ कुछ रियायत होने चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, यह रियायत करें तो उनकी बलमनसी। अलगू चौधरी फूले ने समाये, उठ गड़े हुए और जारे से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिदिन धनी हुई पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की निधि को सराहता था। इससे कहते, न्याय मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने छोटे को कौन गरा कह सकते है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गाले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक श्रद्धु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठ कर ना कोई किसी कल दोस्त होता है ना दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जवाब से गुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों को माइल दूल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई।